अच्छा फ़नकार रहा और उसने भी ज़िंदगी में तंगी ही गुजारी, ठीक ठाक तंगी गुजारी, और अब अल्टीमेटली आप बताइए जेल में अपनी ज़िंदगी का एक अरसा गुजार के गए और अब नाउ ही इज़ कैंसर पेशेंट। ये जो संजय दत्त वो कहते हैं उनमें फेफड़ों के कैंसर की तशखीस हो गई है। देखिए इंडिया के कितने एक्टर्स जो हैं इन दिनों कैंसर की वजह से चल बसे हैं। उन्होंने हफ्ते की शाम को सांस लेने में मुश्किलात की शिकायत पर अस्पताल में दाखिल कराया गया। पीर को हालत बेहतर होने पर घर जाने की इजाज़त दी गई। 61 ईयर्स इनकी एज है, 61 साल। ऐलान किया कि इलाज की गर्ज से फिल्मी सनत से कुछ अर्सा के लिए वक्फा ले रहे हैं और मद्दाहों को फिक्रमंद होने या गैर ज़रूरी इतलात फैलाने की ज़रूरत नहीं। मद्दाहों की मोहब्बत और सपोर्ट से मैं उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। उन्होंने जो ट्वीट किया था, हाय फ्रेंड्स, आई एम टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम द वर्क ऑफ सम मेडिकल ट्रीटमेंट, माय फैमिली एंड फ्रेंड्स आर विद मी एंड अर्ज माय वेल विशेस नॉट टू वरी और अननेसेसरीली स्पेक्यूलेट, विद योर लव एंड गुड विशेस आई विल बी बैक सून। ये उन्होंने ट्वीट किया था, मगर अब आज इंकशाफ किया गया कि संजय दत्त जो है उनका डायग्नोज हुआ है लंग कैंसर। संजय दत्त में फेफड़ों के कैंसर के तीसरे में थर्ड स्टेज के ऊपर हैं और फिल्म फेयर के जराए ने बताया है कि इस खबर से बाबा बहुत परेशान हुए, उनके छोटे बच्चे हैं। खुशकिस्मती से वो दुबई में अपनी माँ के साथ हैं, मगर इस बुरी खबर से उन्हें आगाह करना आसान नहीं। बीमारी के हवाले से जराए ने बताया कि ये काबिल इलाज है, उन्हें फौरी इलाज की ज़रूरत है और इसीलिए वो फौरन रवाना हो रहे हैं। संजय दत्त बैरून मुल्क के इलाज पर गौर कर रहे हैं, मगर बम्बई में डॉक्टरों ने भी मुशावरत करेंगे जिसके बाद वो हतमी फैसला करेंगे। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक संजय दत्त के इलाज के लिए जल्द अमेरिका रवाना हो जाएंगे। 61वीं सालगिरह भी रिसेंटली उन्होंने अपनी मनाई थी। संजय दत्त ने मुस्तकबिल करीब में सड़क दो, भोज और तरबूज नामी फिल्मों में नजर आएंगे। सड़क दो जो है हिदायतकार महेश भट्ट की 90 की दहाई की फिल्म सड़क का सीक्वल है, यानी उसी की अगली एपिसोड है। 21 साल बाद कोई फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले बॉलीवुड में इरफान खान, ऋषि कपूर, सोनाली बांद्रे, ये तीन लोगों को रिसेंटली कैंसर के साथ इनकी डेथ्स भी हुई थी। इरफान खान, ऋषि कपूर बीमारी से काफ़ी अर्से तक लड़ने के बाद पिछले साल ही उनकी मौत हुई थी। ऑफकोर्स इट्स सैड न्यूज़, मगर संजय दत्त, आई फेल्ट सॉरी फॉर संजय दत्त कि अपनी ज़िंदगी को कष्ट में काटा उन्होंने, कंटिन्यूसली कष्ट में काटा। चलिए साहब, एक पोएम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और उसके बाद हम आगे चलेंगे। आज दो बड़ी खबरें इंडिया से जो मैंने आपके साथ शेयर की। पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही थी कि मरियम नवाज़ को नैब में बुलाया गया था। पाकिस्तान में लोगों को करंट लगने की वजह से जो उनकी डेथ्स हो रही हैं इसके बारे में भी इस वक्त खबर बहुत गर्म है। एक पोम जो आपके साथ शेयर करती हूँ, परवीन शाकर, बहुत अगस्त के महीने में परवीन शाकर की डेथ हुई थी, अगर आप याद कीजिएगा। CSS ऑफिसर हुआ करती होती थी, बहुत खूबसूरत शायरा थी, लिखती थी तो बेहतरीन अल्फाज का इंतखाब करती थी, बेहतरीन सब्जेक्ट्स लिया करती थी, मगर उन्हीं की एक पोम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लिखती हैं कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी, मलाल इतना मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद है सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। परों को काट दिया उड़ान से पहले, ये खौफ हिजर है शौक विसाल थोड़ी है, मज़ा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गुरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है, क्या खूबसूरत बात है कि मज़ा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गुरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। परवीन शाकिर का कलाम मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स में। विलेज टेस्ट का मैं जिक्र करना चाहती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर बाहर खाना खाने को दिल करता है तो यू मस्ट गो टू विलेज टेस्ट, 4141 डिक्सी रोड पे। इतनी बड़ी फैसिलिटी है और आप सोचिए उनके कितने ओवरहेड्स होंगे, और अगर हम बांट लेंगे आपस में मिल के वहाँ पर जाएंगे तो यकीनन आप फन भी करेंगे, अच्छी फूड को भी इंजॉय करेंगे और ऑफ कोर्स इट विल हेल्प देम एज वेल। विलेज टेस्ट का फूड बहुत अच्छी है, आपको पता ही है। जनाब फैसल चट्ठा साहब इससे पहले एक बैंक्वेट हॉल को रन करते रहे हैं, उनके नाश्ते जुबान ज़दे आम थे, यानी वहाँ हलवा पूरी का नाश्ता लोगों ने बहुत पसंद भी किया। सरवत,
बिल्कुल, हम लोग गए थे अभी, कमाल का नाश्ता था, हमने कनाडा में इस तरह का नाश्ता नहीं किया।
बहुत बेहतरीन,
बहुत अच्छा,
बहुत बेहतरीन, ताज़ा ताज़ा हलवा, पूरी, चने और साथ में अचार और इतने
आमलेट भी था और साथ वो हर चीज़, यानी और वो हलवा भी बड़ा मज़े का था, मतलब स्पेशल। उनका जो कुक है बहुत ख़ास,
उनका कुक बहुत स्पेशल है, ही इज़ अ वेरी स्पेशल कुक और क्रेडिट गोज़ टू हिम। बहरहाल फैसल, इट्स अ बहुत बड़ी फैसिलिटी है, आपसे रिक्वेस्ट है कि विलेज स्टे जरूर तशरीफ़ लेके जाएं। ये डिक्सी एंड निमतोर्प के इंटरसेक्शन पे आपको मिलेगा, 4141 डिक्सी रोड पे, बैक साइड से मॉल के ईस्ट साइड से अगर आप एंटर हो तो आपको विलेज स्टे, यू कैन नॉट मिस इट। उनका नंबर 9052323663 उनका नंबर है। अब एक गीत का वक्त,
अल्फा जी वो ऑफर तो बता दें, 15% ऑफ है 14 अगस्त को, अगर आप लंच करेंगे वहां पर विलेज टेस्ट पर या फिर आप डिनर करेंगे तो 15% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा 14 अगस्त को विलेज टेस्ट,
14 अगस्त सेलिब्रेशन के लिए 14% जो भी आप
15% ऑफ देंगे वो, चाहे आप लंच करें या आप डिनर करें या मतलब दोनों में से एक। अब ये पता चला कि लंच भी कर रहे हैं तो आप डिनर भी कर रहे हैं,
लंच के पैसे अलग हैं, उस पे 15% है, जो डिनर करेंगे
मिल जाएंगे
15%।
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तो 15% ऑफ मिले।
ये तो नहीं कि हम लंच और डिनर करेंगे तो दोनों का एक बिल तो नहीं देना, दो बिल है दोनों पे 15% ऑफ
मिलेगा। ये
अब आप मेरे पे पाबंदी लगा देंगे, नहीं आपको एक बंदे के ऊपर 15%, 10 के साथ जाऊं, एक जाऊं, अकेली जाऊं, तो आप मुझे 15% तो देना।
बिल्कुल दें, मतलब जाहिर है जो भी बिल आएगा ठीक है उस पे 15% मिलना चाहिए। तो विलेज टेस्ट ही ऑफर दे रहा है 14 अगस्त को।
थैंक यू वेरी मच। 14 अगस्त को, आज 11 अगस्त का दिन है, 14 अगस्त मैं बल्कि आपके साथ शेयर ये भी करना चाहती थी कि 14 अगस्त एक्चुअली पाकिस्तान और इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे है दैट इज़ 15 अगस्त, 15 अगस्त का है, मगर जो हमारा आज़ादी का पहला साल था यानी फर्स्ट एनिवर्सरी के ऊपर ये डेट चेंज हुई थी 15 से 14, हालांकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, मैं ख़ुद भी बल्कि 2 साल पहले तक यही समझती थी कि शायद हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया 15, इंडिया वही जिस दिन आज़ाद हुआ था वो अपनी सेलिब्रेशन उसी दिन करते हैं, मगर पाकिस्तान में कायदे आज़म की मौजूदगी में ही बाकायदा एक मरासला गया था जिसकी वजह से फिर ये चेंज आया था। कुछ लोगों ने बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च किया, यकीनन आज मैं उसके बारे में भी बात करूँगी। इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे जनाब कायदे आज़म, मरहूम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे। इंडिया, ये मेरी रिजर्वेशन थी कि इंडिया में नेहरू भी थे, गांधी साहब भी थे, तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन क्यों इंडिया के गवर्नर जनरल बने थे, और 15 तारीख को क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन को छोड़ के एज ए गवर्नर जनरल का अपना ओहदा, उसका हलफ लेना था, तो इसलिए 14 तारीख को वो अपनी तमाम चीज़ों को पाकिस्तान से निपटा गए थे, मगर जितने कागजात इंडिपेंडेंस थे उन तमाम कागजात में पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे वॉज 15th, क्योंकि 14 की रात और 15 की दरमियानी रात को इनका जो 15 तारीख जब शुरू हुई तो दैट इज़ एक्चुअल इंडिपेंडेंस डे, मगर 47 और 48 में जब फर्स्ट एनिवर्सरी आनी थी तो पाकिस्तान से बाकायदा मरासला भेजने के बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से इसका अप्रूवल लिया गया था और कि हम सेलिब्रेशन जो है वो 14 तारीख को करेंगे। यकीनन इसके बारे में आज के प्रोग्राम में आगे जाके बात करूंगी, मेरे साथ रहिएगा प्रोग्राम में, और स्टूडियो का नंबर 4166201778।
जी चलें गीत की तरफ चलते हैं, और ये है गीत राहत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में,
बिछड़ना भी ज़रूरी था, बहुत खूबसूरत गीत है साहब। ज़िंदगी में बहुत से रिश्ते होते हैं, हम उनसे जुदा होना नहीं चाहते मगर हम जुदा हो जाते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला करे कि जिन लोगों का प्यार मोहब्बत है वो हमेशा इकट्ठे रहें, मगर किसी एक को तो जाना ही होता है पहले। खूबसूरत गीत आपकी समातों की नज़र।
लफ्ज़ कितने तेरे पैरों से लिपटे हो गए, तूने जब आखिरी खत मेरा डला काले हों तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ू का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाज़ों को गदा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। कहाँ पहुँचे मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ू का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था।
अमीजान सलाम, पैसे मिल गए?
जीती रहो। हाँ हाँ बेटा, इस बार सैलरी जल्दी मिल गई क्या?
नहीं अम्मी, जूम किए हैं।
जूम क्या मतलब?
जूम मतलब फास्ट एंड रिलायबल मनी ट्रांसफर। अभी डाउनलोड कीजिए जूम मनी ट्रांसफर ऐप फ्रॉम PayPal, दैट्स XOOM, और अपने मोबाइल से पैसे ट्रांसफर कीजिए, बैंक डिपॉजिट्स, कैश पिकअप या मोबाइल रिचार्ज।
अब पाकिस्तान पैसे भेजिए सिर्फ चंद क्लिक्स के जरिए।
जूम, अ PayPal सर्विस, तेज आसान और महफूज मनी ट्रांसफर।
ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕੈਲੇਡਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਰੀਆਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਲੌਕੀ, ਕਰੇਲੇ, ਬੈਂਗਣ, ਮੂਲੀ, ਮੇਥੀ, धनिया, साग, मटर, गाजरा, करेले, खीरे ते शलजम ते होर भी बहुत सारी सब्जियां खुद अपने हत्था नाल उगा के बेचते हैं ताडे लई। अपना फॉर्म ते अपनी ही दुकान अज ही पहुंचो। कैलेडन सब्जी फॉर्म, 12050 एयरपोर्ट रोड, कैलेडन एयरपोर्ट एंड मेफील्ड रोड, 9056533633, 9056533633।
आप CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के साथ बहुत ही आसानी से अपने घर से विदेश पैसे भेज सकते हैं, वो भी $0 ट्रांसफर फी पर। आप पैसे ऑनलाइन या CIBC के मोबाइल ऐप से भेज सकते हैं। आज ही अपना पहला ट्रांसफर करें और पाएं $50। अधिक जानकारी के लिए CIBC.com/transfer पर जाएं।
Pizzas Pros and Wings, 6 location to serve in GTA, North York, Brampton, Etobicoke, Yahoo, Mississauga. Fresh और मजेदार pizzas की variety, या order करना हो अपना मन पसंद custom made pizza. इसके अलावा pizza roti, potato wedges, fries, salad, garlic bread या खाने हो garlic fingers. To order or take out, call 905-789-8838, 905-789-8838.
अपने घर की खूबसूरती के लिए आज ही कॉल कीजिए SS पेंटिंग। किसी भी इंटीरियर या एक्सटीरियर पेंटिंग के लिए, रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, ड्राईवॉल रिपेयर्स, वाटर डैमेज, वॉलपेपर रिमूवल, प्रोफेशनल पॉपकॉर्न स्टोको सीलिंग एंड रिपेयर विद गारंटी, कॉल टुडे SS पेंटिंग 6472711974, 6472711974, SS पेंटिंग।
साहब, एक फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद। बाज लम्हे और बाज घड़ियां बहुत खूबसूरत हुआ करती हैं। क्यों खुश खूबसूरत हुआ करती हैं? कहते हैं कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो मौत के वक्त या जब जनाजा होता है और सब लोग वहाँ मौजूद होते हैं तो रिश्तेदार, अहबाब, बच्चे अनाउंस करते हैं कि मेरे बाप ने अगर किसी का या मेरी माँ ने अगर किसी का कर्ज़ा देना था तो आप बता दीजिएगा। या बाज़ औक़ात बहुत से लोग अपने दोस्तों के सुपुर्द भी ये काम कर जाते हैं। फिर हम जब जीते हैं तो वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ भी करते हैं। यू नो वाट, जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, माई हार्ट, हम अपना दिल किसी को दिखा नहीं सकते। शायद मैं अपने दिल में टपकते हुए उन आंसुओं को महसूस कर सकती हूँ। ये कहते हैं ना, दिल रोता है। तो मैं कभी कभी अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत कंसिडर करती हूँ कि कभी गलती भी करें तो अगर हमें हमारी गलती का एहसास हो जाए तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है कि मैं जीते जी अपनी गलती का मदावा किसी तरह से कर सकूँ। मेरे एक बहुत प्यारे भाई हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्हें ही सो काइंड, तो उन्होंने मुझे मेरी गलती का एहसास भी, उन्होंने कहा आप खुद एतराफ़ करती हैं कि आपके काम बहुत सी जगहों पे आप फंसी हुई हैं। ए भाई, फंसी हुई नहीं हूँ मैं, आपको एक बात कहूँ, मैं तो कल परसों भी किसी को बात करी थी, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कुरान पाक की आयत है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी जान को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता जिससे जितनी उसकी सकत ना हो, यानी किसी पे उसकी सकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता अल्लाह तबारक व तआला। कुरान की आयत है, इस ये एब्सोल्यूट सच है। तो मुझे कहने लगे कि आप खुद कहती हैं कि आप के काम ज़्यादा जगहों पे फंसे हुए, काम नहीं फंसे हुए, अकेली हूँ ना, तो मैं आदमी भी हूँ, मैं औरत भी हूँ, मैं सफाई करने वाली भी हूँ, मैं मतलब मैं तो बहुत सिंपल सा इंसान हूँ, एंड आई एम एवरीथिंग। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं अपने कामों को खुद करती हूँ तो आई फील गुड। और मैं हर औरत को कहती हूँ कि इतना स्ट्रांग हो कि अगर आपको कपड़ा सीना पड़े तो आपको कपड़ा सीना भी आता हो, और अगर आपको कील लगाना पड़े दीवार के ऊपर, आपको पेंट करना पड़े तो आपको वो भी करना हो, क्योंकि हालात कभी भी ज़िंदगी में एक से नहीं रहा करते होते। एंड आई फील गुड जब मैं अपना काम करती हूँ और मैं कोई छुपा के नहीं आपसे बात करती, मैं ओपनली आपसे कहती हूँ कि मुझे अभी भी, हम जो दूसरा स्टूडियो बना रहे हैं, देर आर मैनी थिंग्स जो मैंने अपने हाथ से की हैं, हालांकि बहुत से लोगों ने वहाँ पे काम किया है, मगर आई फील गुड कि जो मेरी थॉट्स के मुताबिक चीज़ होती हैं, आई जस्ट गो, लेट नाइट भी जाती हूँ तो मैं उस काम को, पाया तकमील को पहुँचा लेती हूँ। تو مجھے کہنے لگے کہ پہلی بات تو یہ کہ اتنا خوبصورت گیت آپ نے سنایا, اور آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس پوئٹ کے بارے میں ضرور بتا دیں جنہوں نے, راحت فتح علی خان کی آواز تھی مگر پیچھے رائٹر کون تھا. رائٹر خلیل الرحمان قمر ہیں. یہ خلیل الرحمان قمر جنہوں نے پاکستان کی بہت ساری فلمیں بھی لکھی ہیں, جنہوں نے پاکستان کے ڈرامے بھی لکھے ہیں, بہت خوبصورت رائٹر ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے کی طرف مڑیں تو ابھی یہ جب عورت کا معاملہ چلا تھا اور پاکستان کی جو ایکٹیوسٹس ہیں جنہوں نے کہا تھا میرا جسم میری مرضی وغیرہ وغیرہ لگایا تھا, تو یہ ایک بڑی کانٹروورسی اسٹارٹ ہو گئی تھی. کانٹروورسی کیا تھی کہ انہوں نے ایک بیان دے دیا تھا اور تھوڑا سختی پر, اور اس شخص کا مطالعہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ مطالعہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ میری اس وقت یہ بات کرنے سے بھی کچھ لوگ شاید اس سے خائف ہوں یا ناراض ہو جائیں, مگر یعنی جب چیزیں آؤٹ لیش ہو جاتی ہیں یعنی آپ کے کنٹرول سے باہر نکلتی ہیں, تو کہیں نہ کہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, چیزوں کو ترتیب میں لانے کے لیے کہیں نہ کہیں سخت زبان یا سخت الفاظ کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے. تو ایک ٹیلی ویژن کا ایک ٹاک شو ہی تھا جہاں پہ سرمد شاید سم تھنگ اس لڑکی کا نام تھا, اس نے کچھ کہا تھا. باقی تمام لوگوں کی میموری ذرا زیادہ اچھی ہے, ایم اولڈ, میری میموری تھوڑی ویک ہو گئی. تو انہوں نے بڑا ٹف بیان دیا تھا جس کے بعد پاکستان کے بہت سارے رائٹرز, بہت ساری اور خاص طور پہ یہ جو ایکٹیوسٹس تھیں نا, یہ زیادہ ایکٹیو ہو گئی تھیں اگینسٹ ہم خلیل الرحمان قمر کے بارے میں. ان کا یہ کلام تھا, تیری آنکھوں کے سمندر کا اترنا بھی ضروری تھا, یہ ان کا ایک ڈرامہ تھا, اس ڈرامے کے لیے یہ انہوں نے گیت لکھا تھا. بہت ساری فلمیں بھی انہوں نے لکھی ہیں, اور یہ ایک کانٹروورسی ریسنٹلی یہ جب عورتوں کے بارے میں ہوئی تھی. میں بلکہ یہ جو ایکٹیوسٹ عورتیں ہیں یا یہ جو لوگ بات کرتے ہیں وہ ان کے بارے میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان کی اچھی چیزوں کے کیوں نہیں یہ لوگ ہائی لائٹ کرتے. آپ کو بتایا کہ بعض اوقات تو تیجا رلیا تو چگا گلیا والی بات ہے. وہ کون تھی؟ مختارہ مائی. مختارہ مائی کی زندگی کو, وہ کہتی ہے کہ میں ملتان سے تعلق رکھتی تھی, ایکٹیوسٹ جب انوالو ہوئے اور وہ جب فلم بھی بنی تھی, تو وہ کہتی ہے کہ مجھے لالچ کیا دیا گیا تھا, اور پھنستا انسان تبھی ہے جب اس کو وہ کسی لالچ کے بیچ میں آیا کرتا ہوتا ہے. تو مختارہ مائی کہتی ہیں کہ ان کو کہا گیا تھا کہ میری سرجری, فیس کی سرجری بھی یہ کروا دیں گے, اور وغیرہ وغیرہ, برقعہ بھی اتارا, فلم کے بیچ میں بھی آئی, مگر اس کو ایک پیسہ نہیں دیا گیا. میں مختارہ مائی کا ایک دن انٹرویو پڑھ رہی تھی. ٹھیک, تو یہ جو آرگنائزیشنس ہوتی ہیں, یہ جو این جی اوز ہوتی ہیں, دے آر پیڈ آرگنائزیشنس. مجھے پتہ ہے بہت سارے اچھے کام بھی کر رہی ہیں, مگر بعض اوقات یہ صرف نگیٹیوس کو ابھارنے کے لیے ہوتی ہیں, بیکاز جتنا یہ نگیٹیو کو ابھاریں گی اتنی زیادہ ان کی فنڈنگ ہوگی, بیکاز دے آر ورکنگ نا. اینی ویز, تو مظہر بٹ صاحب کا میں ذکر کر رہی تھی, تو مجھے خفا ہیں, کہتے میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا, میں اور میری بیگم آپ سے ناراض ہیں. میرے بھائی, میں تو گھر آ کے بھی آپ کو منا لوں گی, کیوں آپ خفا ہیں؟ دس از ٹو شارٹ ٹو لیو. اور میں ایک اچھا بھائی, اچھا دوست, اچھا بیٹا گنوانا نہیں چاہتی. زندگی میں تعلقات بنتے بہت مشکل سے ہیں. یس, ہماری کوتاہیاں بعض اوقات بیچ میں شامل ہو جایا کرتی ہیں, اور میں یہ صرف آپ کو اپنے لیے نہیں کہہ رہی, میں آپ کو عام زندگی میں بھی کہہ رہی ہوں کہ بعض اوقات قرآن میں ایک لفظ ہے, اور پھر میں قرآن پاک کا ذکر کرنا چاہتی ہوں, کہ اللہ نہ کرے کہ میرا اور آپ کا دل اتنا سخت ہو جائے جیسے پتھر ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں مثال دیتا ہے, اتنے سخت ہیں ان کے دل جتنے کے پتھر, حالانکہ پتھر بھی اتنے نرم ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. تو میں تو آپ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ ترین مخلوق ہیں, انسان ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ نے دل میں جذبات بھی رکھے ہیں, محبت کو بھی اپنی محبت کا ایک حصہ بھی کوٹ کے ڈالا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو, اب فرشتوں کو تو نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے, کیا چیز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, تو ابلیس جو تھا اس نے انکار کر دیا, باقی فرشتوں نے سجدہ. پھر اس جس وہ جو ایک مٹی کا بت بنا کے اللہ رکھا تھا, تو اس کھنکھناتی مٹی سے اس میں سے آواز آتی تھی, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی اس کے بیچ میں. یعنی کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی سوچ کے بنے کہ یا اللہ تیرے سبحان تیری قدرت, تو نے مجھے انسان بنا دیا جس میں تو نے اپنی روح پھونک دی. تو خدا کرے کہ میرے اور آپ کے افعال اور کردار بھی ایسے ہی ہوں کہ جس میں ہم اس پھونکی ہوئی روح کا کہیں نہ کہیں کوئی اثر اور شائبہ نظر آنے کو ضرور ملے. تو مظہر صاحب, میرے بچے, آئی ایم سو سوری, میں نے आपको बाद में कॉल करूँगी और 5:15 बजे कॉल करूँगी, बाजू जुड़ा के दो बात करूँगी, ये प्यार मोहब्बत की लड़ाई होगी। हमारी बहुत प्यारी एक बेटी है, नौशीन इनका नाम है। हालांकि मैं ये कहती हूँ कि कनाडा में कुछ लोग जिन्होंने मेरे माइंड ने अगर कोई कंसीव किया कोई चीज़ या कोई ख्याल, तो उन्होंने उस ख्याल को पढ़ा, तो 2-4 लोगों का मैं नाम ले सकती हूँ। हमेशा दिमाग में मेरे ख्याल आते हैं, तो ये आज से कुछ 13 साल पहले की बात है जब लाइव स्ट्रीमिंग, अब तो टेलीविज़न आप देख रहे हैं, कैमरे लगे हुए हैं, तो उस ज़माने में मैंने लाइव स्ट्रीमिंग जब शुरू की थी तो मेरे दिमाग के इस कॉन्सेप्ट को पिक किया था अल्ताफ़ राव ने और समीना ने, और फिर इन दिनों ने काम करके हमने कैमरे ख़रीदे और हमने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। बड़ी दुनिया जिन्होंने देखा, हालांकि 13 साल पहले वो लाइव स्ट्रीमिंग का वो काम तो मेरे दिमाग में भी कहाँ से आया था कि अगर सिक्योरिटी कंपनीज में हो सकती है तो हम रेडियो को भी लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं ऑन टेलीविज़न। ये 14 साल पुरानी बात मैं आपसे कर रही हूँ। तो हमारी बहुत प्यारी बेटी नौशीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी एजुकेटेड और शी राइट्स वेरी गुड। उनकी बड़ी प्यारी एक पोम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। किसी और ने तो खैर बहुत खूबसूरत तरीके से अदा की थी, मगर मुझे भी उसके अल्फाज अच्छे लगे कि उन आँखों से उजाले अब नहीं मिलते। यकीनन बेनूर आँखों का जिक्र किया, क्या हुआ, उन आँखों से उजाले अब नहीं मिलते, आँखें पढ़ने वाले अब नहीं मिलते, लाइफ इज चेंज्ड टेरिबली चेंज। मोहब्बत करने वाले हैं, मोहब्बत को पहचानने वाले नहीं मिलते, अपनी अपनी आपोतापी पड़ी हुई है। उन आंखों से उजाले अब नहीं मिलते, आंखें पढ़ने वाले अब नहीं मिलते, फकत नस्बत हो काफी सर उठाने को, वो उल्फत के हवाले अब नहीं मिलते। बिछड़ मुझसे गए दस्ते दुआ मेरे, दुआएं करने वाले अब नहीं मिलते, शिकस्ते यार पर नौशीन। अगला मैं शेर की तरह जाती हूँ। हो जाते हैं दर बदर तुम अगर न होते हम, हो जाते दर बदर तुम अगर न होते हम, गुमा पे रखने वाले अब नहीं मिलते, मोहब्बत कहते हैं अब दिल लगी को लोग, मोहब्बत करने वाले अब नहीं मिलते। बहुत खूबसूरत कि मोहब्बत कहते हैं अब दिल लगी को लोग, मोहब्बत करने वाले अब नहीं मिलते। ज़माने से तो सभी डरते हैं नौशीन, खुदा से डरने वाले अब नहीं मिलते। ये दो मुझे आपके वर्सेस सारी पोम बहुत प्यारी है कि मगर मोहब्बत कहते हैं अब दिल लगी को लोग, मोहब्बत करने वाले अब नहीं मिलते। ज़माने से तो सभी डरते हैं नौशीन, खुदा से डरने वाले अब नहीं मिलते। नौशीन का जब मैं जिक्र करती हूँ तो आई फील गुड। अल्ताफ़ राव माशाल्लाह आईटी प्रोफेशनल है, वेरी गुड, बट हिज़ वाइफ इज़ आल्सो वेरी एजुकेटेड। आई बिलीव किड्स आर बड़े हो गए होंगे बच्चे अब, और डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड सीइंग यू। और मज़हर साहब आपसे भी इंशाल्लाह मैं लाजमी तौर पे मुलाकात करूँगी। बहुत शुक्रिया नौशीन राव, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू बेटा। ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ बीहोल्डर। शहनाज शेख, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। अशफाक खान साहब बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह रुबीना अफजल, थैंक यू वेरी मच। हमारी एक बहुत अच्छी सी एक बेटी है, और वो हमेशा कहा करती हैं माय बेबी इज़ नैप टाइम, तो फिर पता चला बेबी इज़ 4-legged बेबीज़, तो मैंने उनको बड़ी दफ़ा कहा हार्मनी, तो हार्मनी आई वांट टू सी योर बेबी। बाय द वे हमने एक ड्रॉ किया था जिसको दो लोगों ने विन किया था, निशी खान ने और जनाब मिस्टर होते अचल सिंह होते ने। अनफॉर्चुनेटली वी वेटेड अराउंड 10 days के लिए हमारा इंतज़ार था। शाजिया जी आप भी आ जाइएगा, सरवत आप भी आ जाइएगा, और मेरा दिल था कि 4 नाम और डाल देते मगर हम वो नाम डाल नहीं सके। तो ये ड्रॉ आम सा ड्रॉ नहीं है, दिस इज़ अ वेरी नाइस 5G IP बॉक्स है जो कि 240 का है, 210% डिस्काउंट के साथ 216 का अवेलेबल है। तो इट इज़ जस्ट अ टोकन, 2 IP boxes का एक ड्रॉ था, हमने किया था और दो लोगों ने इसको विन भी किया था, मगर अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू कम एंड क्लेम योर गिफ्ट ना, नोबडी केम एंड नोबडी क्लेम्ड। तो हमारी कोशिश थी कि हम आज इसको ड्रॉ को दोबारा कर लें, तो बस वही पर्चियां हमारे हाथ में, हमने अच्छी तरह से इनको हिलाया। शाजिया जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख लीजिएगा, ये वो नाम हैं ایک نام ہمارا شازیہ جی نکالیں گی اور ایک نام ہمارا سروت نکالیں گی. ٹھیک ہے, یہ کوئی اس کی اور وجہ نہیں تھی. آپ لوگوں کی شمولیت رہی, بہت شکریہ. ٹائم بھی کم ہو گیا. لک یس شازیہ, پلیز کم ہیئر اور ایک یہاں پہ آ جاؤ گی تو کیمرے پہ بھی نظر آ جاؤ گی. سارے لوگ آپ کو بہت پسند بھی کرتے ہیں. آپ نکالیے اور نام اناؤنس کیجیے.
اچھا جی, ایک جن کے نام نہیں نا میرے ہاتھ میں وہ مجھے بدوائیں دیں گے.
نہیں نہیں, تو آئی نو سمبڈی, شی ون ٹوائس, دو دفعہ انہوں نے جیتا.
ارے یہ تو میری بہن ہے ناہید, یہ تو ہم میری اور عامر کی بہن ہے, یہ جو ہم کو فون کرتی ہیں ہر وقت. گڈ جاب.
اینڈ آئی شی ول کم اینڈ شی ول کلیم ہر. یس یس یس, شی ول کلیم ہر گفٹ. آپ رکھ لیجئے گا یہ,
دیکھیں
یہ آپ ہی آپ رکھیں.
یہ اب لگے گا کہ یہ جو مجھے بھیج رہی تھی, چیک بھیج رہی تھی, اس کا نتیجہ.
ہم کبھی سب تو باز آ جا. اچھا
وہ میجک سیکھنا پڑے گا بھائی. کیا بات ہے, خواتین دونوں ونر. ندا
ندا
ندا کا نام نکلا,
دوسرا نام ندا کا ہے. ناہید آپ کا نام اور ندا دونوں خواتین کا نام نکلا. آئی پرسنلی نو سمبڈی, شی ون ٹوائس اس نے کھیلا پرنسس مارگریٹ کی لاٹری, اور ایک دفعہ بھی اس کا گھر نکلا اور دوبارہ پھر اس کا گھر ہی نکلا.
کیا بات ہے جی,
دو بار.
کیا بات ہے,
اینڈ شی از پاکستانی.
نو نو, آئی ایم جسٹ سیئنگ اٹ ٹو یو دیٹ ندا از ریئر, مگر
ہو جاتا ہے. کچھ لوگ بہت لکی ہوتے ہیں,
بہت لکی ہوتے,
لوٹری نکلتی رہتی.
چلیے صاحب ایک گیت کی طرف لے کے چلتی ہوں آپ کو, اور شازیہ جی ہمارے ساتھ شامل ہوں گی 5:15 کے قریب. اور یقیناً جیسے میں نے آپ کو سنجے دت کی بھی خبر دے دی ہے کہ ان کو پھیپھڑوں کا کینسر ہوا ہے. جو ہماری مریم نواز ہیں ان کو نیب نے بلایا تھا, وہاں پہ پھڈا ہو گیا. ان کی پارٹی کے باقی لوگ بھی پہنچ گئے اور ان کی گاڑی کے شیشوں کو بھی توڑا گیا. مریم نواز نے اس پہ الزام لگایا کہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نیب نے گھر سے بلایا تھا, اور بیریئر کے پیچھے سے گاڑی پر پتھراؤ کیا گیا. بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو بہت سا نقصان ہو جاتا. اور نیب لاہور کے باہر پولیس اور نون لیگ کے کارکن آمنے سامنے آئے, آگے بڑھنے سے روکنے پر کارکن مشتعل ہوئے. پولیس سے تصادم اور پتھراؤ کیا, پولیس نے بھی جوابی کاروائی کی, اور مگر مریم نواز صاحبہ اپنا بیان ریکارڈ نہیں کر سکی. ایک گیت کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. یہ ایک ینگ بچی ہے جس نے یہ گیت گایا ہے, اور یقیناً اس بچی کی آواز کو بہت سراہا جا رہا ہے. پاکستان کے بے شمار ایکٹرز سنگرز ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے گایا, مگر بہت سے سنگرز ایسے ہیں جن کو بالی ووڈ میں, آف کورس بالی ووڈ از بگ انڈسٹری فلم کے لحاظ سے اور گیتوں کے لحاظ سے, تو وہاں پہ جب ان کو پذیرائی ملی تو ان کی ادائیگیاں بھی زیادہ ہو گئیں, یعنی ان کی کیا اس کو کہتے ہیں رقم بھی ان کی زیادہ ہوئی اور ان کو فیم بھی زیادہ ملی. مگر بہت سے فنکار پاکستان کے ایسے ہیں جنہوں نے صرف پاکستان میں ہی گایا اور انہی لوگوں کے اوپر انحصار بھی کیا. یہ پاکستان کی ایک بچی ہے, ینگ بچی ہے, اور اس کا ایک گیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. انڈیا کے جو سنگر ہیں سونو نگم, آف کورس میرا خیال ہے کہ میوزک کی کوئی باؤنڈریز ہوا نہیں کرتی ہوتی, اور سونو نگم نے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گلوکار یہ اس بچی کا گیت سن رہے ہیں. نیسکیفے بیسمنٹ کا کلام بول ہو پاکستان کی. یہ بچی کی عمر, ہادیہ ہاشمی اس بچی کا نام ہے, اور بہت چھوٹی عمر ہے. کہتے ہیں کہ سونو نگم اس بچی کا یہ کلام سننے کے بعد آبدیدہ ہو گئے. انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ بہت دنوں بعد کچھ اچھا سننے کو ملا, حیران ہوں کہ ایسا کام بھی ہوتا ہے جسے سننے کے بعد انسان پھوٹ پھوٹ کر رو دیتا ہے. بہت بڑائی ہے اس کی کہ انہوں نے ایک ینگ بچی کے گیت کو اتنا سراہا, اور انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ مجھے اتنا اچھا سننے کے لیے ملا اینڈ آفٹر اے لانگ ٹائم, اور میں یہ بھی حیران ہوں کہ اتنا اچھا کلام بھی کوئی پڑھ سکتا ہے کہ انسان پھوٹ پھوٹ کر رو دے. भारती गुलगार ने अपने जज्बात का इजहार करते कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी गाना सुनकर भी फूट फूट कर रो दूंगा। उन्होंने अपनी वीडियो में यह भी बताया कि उन्हें यह कलाम बॉलीवुड की जावेद जाफरी ने भेजा था। भारती गुलकार सोनू निगम ने पाकिस्तानी कम उम्र गुलकारा हादिया हाशमी और सोच बैंड के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करने के साथ साथ उनके कलाम को बहुत सराहा भी। तो चलिए साहब, मेरी कोशिश होगी कि हम पहले हादिया का वो गीत आपके साथ शेयर करें और फिर सोनू निगम ने जो अपनी वीडियो पोस्ट की है हम वो वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। इन्जॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। मगर ऑफ कोर्स हर गीत को आप तक पहुंचाने में हमारे स्पॉन्सर्स का बड़ा रोल होता है, आई डेफिनेटली एक्नॉलेज दैट। दो स्पॉन्सर्स का मैं जिक्र करूंगी। एक तो हमें ज्वाइन किया है कैलेडन सब्जी फार्म ने, और अगर आपका घर में लॉन है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फ्रूट प्लांट ज़रूर लगाइएगा, इनके पास फ्रूट ट्रीज भी हैं। फलदार पौधा लगाने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो आपको इसकी प्राइड बड़ी मिलती है कि पौधा मैंने लगाया था, अपने हाथों से लगाया था। नंबर दो, जब उस पर फल आता है तो जो चिरिंद परिंद उस फल को खाते हैं दैट इज़ अगेन सदकाए जारिया, और जो फल ज़मीन पे गिरता है और ज़मीन के हशरात उसके ऊपर डिपेंड करते हैं दैट इज़ अगेन अ सदका जारिया। तो फलदार पौधे, इसका नाम है कैलेडन सब्जी फार्म। आपने गुलाब लेने हैं, आपने फलदार पौधे लेने हैं, आपने पेरिनियल्स को लेना है, यानी अगले साल आपको मेहनत ना करनी पड़े और कुछ फूल खुद ब खुद आपके जो बाग है या आपका जो बागीचा है उसकी जीनत बन जाए, तो कैलेडन सब्जी फार्म को एक बार विजिट ज़रूर कर लीजिएगा। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स, अगर आपने कद्दू लेने हैं, कद्दू दाल रसूल पाक का पसंदीदा खाना खाना है और कद्दू लेने हैं, इनका तकरीबन 100 acres का ये फार्म है, 100 acres का फार्म है, जाइए अपने बच्चों को लेके जाइएगा तो ये फार्म से एवरीडे फ्रेश वेजिटेबल्स अपने आउटलेट स्टोर पे लेके आते हैं। कैलेडन सब्जी फार्म, ये मेफील्ड एंड एयरपोर्ट, मेफील्ड एंड एयरपोर्ट के इंटरसेक्शन पे, आप समझिएगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बनता है कैलेडन सब्जी फार्म का। मेरी रिक्वेस्ट है आप ज़रूर तशरीफ लेके जाएं कैलेडन सब्जी फार्म पे। एक तो उन्होंने जिक्र किया, इसको स्पॉन्सर किया। आप जहाँ जहाँ हैं, आप स्कारब्रो में, अगर आप फ्रूट प्लांट्स अपने बाग में, और ज़रूर लगाइए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फलदार पौधे दो ज़रूर अपने हाथ से लगाइए। आप कल कलां को ये घर बेच भी देंगे मगर आपके हाथ का लगा हुआ एक पौधा सदका जारिया जिस पे परिंदे भी नज़ार करेंगे, हशरात भी नज़ार करेंगे, ज़रूर अपने घर में फलदार पौधा लगाइएगा। इसके अलावा अगर आप कहीं और हैं, स्कारब्रो साइट में हैं, मार्कम साइट में हैं, तो अतियाज फ्रेश फार्म का मैं जिक्र करना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ी मार्केट है जो इन्होंने फार्म, जहाँ गोश्त सब्ज़ी आटा चावल दाल, यानी पाकिस्तानी मिडल ईस्टर्न ग्रोसरीज़, कनेडियन स्टाइल की ग्रोसरीज़, 5,000 square foot का तो मीट सेक्शन ही है यहाँ पर। अतियाज फ्रेश फार्म, ये स्कारब्रो में कैनेडी रोड पर 1224 कैनेडी रोड पर वाक़ है। अतियाज ह्यूज मार्केट, 22,000 square feet पे अतियाज फ्रेश फार्म है, और इनका फ़ोन नंबर 416-901-1333, 901-1333। ठीक, तो हादिया हाशमी की आवाज़ आपकी समातों की नज़र समात फरमाइएगा।
जा अपनी ये जंग दूर कर दे सबको ये जंग दूर बना ले छोटी सी दुनिया हो जा मस्त मलंग तू
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान लेजर टूथ वाइटनिंग रूट किनाल ट्रीटमेंट डेंटल इम्प्लांट्स
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स हेल्थी स्माइल्स ऑन्टारियो के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट यूनिट 104 मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान 9058721100 कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फॉर फ्री डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा
Grill in the Hut, Mrs. Saga mein. Open for takeout only. Order via phone. Imran bhai ko call kare.
Intihai laziz biryani khana ho ya phir kadai khana ho ya phir steaks ko enjoy karna hai. To aap order place kijiye 905-405-8383. Grill in the Hut.
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की जानिब से स्टेज 3 के लिए खास हिदायत अंदरूनी पब्लिक जगहों पर नो मेडिकल मास्क या चेहरे को ढांपना लाजमी हो गया है जब आप चेहरे को ढांपें तो नाक मुंह और चीन को जरूर कवर करें 2 साल से कम उम्र के बच्चों पर या आपको सांस लेने में दुश्वारी हो या कोई और मेडिकल वजह इन लोगों पर फेस कवरिंग लाजिम नहीं है अंदरूनी मजमा 50 लोगों से ज्यादा ना हो और बाहर 100 लोगों से ज्यादा ना हो घर से बाहर हमेशा 2 मीटर का फासला रखें मजीद मालूमात के लिए brampton.ca COVID-19 पर जाएं या 311 पर कॉल करें
पिंड दा मजा हुन कैनेडा विच वी कैलेडन सब्जी फार्म तो ताजा हरियां ऑर्गेनिक सब्जियां दे नाल हरी मिर्च लौकी करेले बैंगन मूली मेथी धनिया साग मटर गाजरा करेले खीरे ते शलजम ते होर भी बहुत सारी सब्जियां खुद अपने हत्था नाल उगा के बेचते हैं ताडे ले अपना फार्म ते अपनी ही दुकान अज ही पहुंचो कैलेडन सब्जी फार्म 12050 एयरपोर्ट रोड कैलेडन एयरपोर्ट एंड मेफील्ड रोड 9056533633 905-653-3633
The fastest 4K IP box in Canada with 5G latest technology. More than 4,000 channels, English, Hindi, Urdu, Punjabi, all latest movies, drama series, sports, kids section and religious channel. Take this 5G IP box anywhere in the world. For more details, call 647-219-2580. 647-219-2580.
अकाल ट्रक ल्यूब दी ग्रैंड ओपनिंग थाडे जाने पहचाने राजा या फिर जस ट्रक दी बेहतरीन क्वालिटी सर्विस ते नाल फिर वारंटी अकाल ट्रक एंड ल्यूब
ड्राइव थ्रू
अकाल ट्रक एंड ल्यूब
ट्रक वॉश
अकाल ट्रक एंड ल्यूब
रिपेयर
अकाल ट्रक एंड ल्यूब
टायर सर्विस
अकाल ट्रक एंड ल्यूब
Call Jess or Raja 905-565-1100
1776 Myerside Drive in Mississauga Akal Truck and Dube
Ji samne nazreen welcome back again and sab 4:43 aur 28 second hamari ghadiyon mein ho chuke hain aur ab hum aapke liye chalenge jinaab Pradeep ji ki taraf Sun Life Financial se inka taluq hai 416-894-5872 जिना प्रदीप जी का फोन नंबर प्रदीप जी वेलकम टू रेडियो साज़ो आवाज़ कैसे हो सर आप
थैंक यू वेरी मच माजिद भाई आपके सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द टॉक शो और आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है माजिद भाई आपसे और आरिफा जी से तो एक बार फिर से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सबसे के साथ शामिल होके
थैंक यू सो मच आप जब भी आते हैं यहाँ पर हमारे साथ हफ्ते में एक दफ़ा तो हम आपसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते हैं और आज का टॉपिक क्या है
मजीद भाई पिछले 22 साल से एज एन एडवाइजर मैं बात ही बात करता चला आ रहा हूँ और आपके लिसनर्स जो कि फोकस्ड ऑडियंस है आपकी उसके साथ आज हम बात करेंगे फाइलिंग ऑफ अ डेथ क्लेम क्योंकि आप देखें कि लाइफ इंश्योरेंस का मेन मकसद यही होता है कि अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाए तो क्लेम फॉर्म फाइल किया जाए और क्लेम के पैसे लिए जाएं तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि पिछले 4-5 महीने से जब से ये कोविड का जोर बढ़ा है और उसने बहुत बुरी तरह हिट किया है, बहुत सारे डेथ क्लेम्स मैंने बनाए हैं अपने लोगों के लिए जो मेरे क्लाइंट्स थे, तो आज मेरे ख्याल से बात करने में कोई हर्ज नहीं है एक बार फिर से डेथ क्लेम्स के बारे में।
तो अब ये बताइए कि पहला स्टेप क्या होता है?
पहला स्टेप तो मजीद भाई काफी दूर होता है, सबसे पहला स्टेप होता है, उससे भी पहला स्टेप यानी कि जीरो स्टेप जिसे बोल सकता हूं मैं, कि जब भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाए तो हमेशा अपने घर वालों को, खास तौर से जो हस्बैंड्स हैं, उनको चाहिए कि अपनी बीवियों को जरूर 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 इन्फॉर्म करें।
सही।
अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि हमारे केसेस में क्या होता है साउथ एशियन फैमिलीज में, कि बहुत सारी लेडीज को कुछ भी इल्म नहीं होता कि उनके हस्बैंड्स ने क्या प्लान किए, तो इसलिए बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स के क्लेम फाइल ही नहीं होते क्योंकि लेडीज को पता ही नहीं कि क्या हुआ है, है ना। तो इसलिए जितने मर्द हजरात हैं, इनको बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए कि अपनी लेडीज को, अपनी वाइफ्स को, अपने बड़े बच्चों को जरूर इन्फॉर्म करें। इसके अलावा कहीं जरूर लिख के छोड़ें कि किस कंपनी से पॉलिसी ली है इन्होंने माजिद साहब, और उसका अमाउंट क्या है, और एडवाइजर का नाम और एडवाइजर का फोन नंबर, ये जरूर होना चाहिए हर फैमिली और हर इंश्योर्ड पर्सन के पास या हर पॉलिसी ओनर के पास।
सही। तो अब ये बताइए कि फर्स्ट स्टेप, इसके बाद जीरो स्टेप तो हो गया, ये फर्स्ट स्टेप क्या है?
फर्स्ट स्टेप हो गया कि अब ये हुआ कि अब ये ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ, है ना, कि डेथ हो गई है ना इंश्योर्ड पर्सन की, तो अब हमें क्या करना है कि हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंपनी को, है ना। तो कंपनी को इन्फॉर्म कर सकते हैं या तो आप डायरेक्ट, या बेस्ट अगर आपके पास डिटेल्स हैं आप एडवाइजर को कॉल करें और आपको बताना पड़ेगा एडवाइजर को कि किस दिन डेथ हुई, कितने अप्रोक्सीमेटली क्या टाइम था, अगर आपको पता है तो, घर पे डेथ हुई कि रोड पे डेथ हुई एक्सीडेंट में या किसी हॉस्पिटल में डेथ हुई, है ना। इसके अलावा फिर क्या है कि ये कैनेडा में ही हुई या फिर आउट ऑफ कैनेडा हुई, तो ये पूरे डिटेल्स हमें देने पड़ेंगे और उसका रीजन भी देना पड़ेगा। जैसे बहुत लोगों को कैंसर से डेथ हो जाती है या हार्ट अटैक से डेथ हो गई या एक्सीडेंट हो गया माजी साहब, तो ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
साहब प्रदीप जी से बात कर रहे हैं, सन लाइफ से इनका ताल्लुक है, 416-894-5872 जिनाब प्रदीप जी का फोन नंबर है। प्रदीप जी आपने बताया, यस आई कैन टोटली एग्री विथ यू, मगर इसके बाद आपने जब एडवाइज़र को फ़ोन कर दिया तो बाय द टाइम ये कंपनी से आपके पास क्लेम फॉर्म्स आते हैं, उसके दरमियान एडवाइज़र से आप क्या बातचीत करते हैं?
आपको एक बार क्या करना चाहिए माजिद भाई, हमारी जो कम्युनिटी इसमें बहुत कॉमन है, बहुत कैजुअल लोग हैं, तो इसलिए बहुत बार लोग अपने जो एड्रेस हैं, घर के पते हैं, वो चेंज हो जाते हैं लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड्स में अपडेट नहीं करते, है ना। तो जब ये बातचीत हो रही है तो एडवाइजर को ये भी बताना चाहिए, और खास तौर से आज के जमाने में जहां पर कि कई बार फिजिकल कॉन्टेक्टिंग इज नॉट सो इजी, है ना, तो अपना ईमेल एड्रेस भी जरूर देना चाहिए, है ना, ताकि अगर कोई फॉर्म वगैरह फॉरन भिजवाने हो तो ईमेल से भिजवाए जा सके। तो अपना एड्रेस, फोन नंबर, और ये जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ या मैं उनका शौहर बोल रहा हूँ या मैं उनका फादर बोल रहा हूँ, अपनी रिलेशनशिप, क्योंकि जब एडवाइजर बताएगा कंपनी को कि ऐसा ऐसा हुआ तो उसको ये भी बताना पड़ता है कि किसने इत्तला दी, है ना, और उसका लाइफ इंश्योर के साथ क्या ताल्लुक था, है ना। तो ये चीजें जितनी आप खुलासा करके बताएंगे उतना ही काम आपका स्मूथ हो जाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ।
416-894-5872 जिनाब प्रदीप जी का फ़ोन नंबर है। प्रदीप जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पॉलिसी नंबर और पॉलिसी बुकलेट्स वगैरह घुमा देते हैं या उनको पता नहीं होता कहाँ है, अगर किसी फैमिली मेंबर्स को पता नहीं है इस चीज़ का कि पॉलिसी नंबर और पॉलिसी बुकलेट अवेलेबल ही नहीं है तो फिर क्या होगा?
तो फिर उस केस में क्या करना पड़ता है माजिद भाई, कि अगर आपको आपने एडवाइजर को बताया तो या तो एडवाइजर कोशिश करेगा कंपनी से पता करने का, है ना, कि भाई ये फलाने फलाने साहब के साथ ऐसा हुआ तो उनका पॉलिसी का नंबर ये है, तो एडवाइजर बता देगा। अगर आप, आपकी एडवाइजर से बात हो गई और आपका कॉम्पिटेंट एडवाइजर है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में मैंने कई लोगों की हेल्प की जो जिनका मैं एडवाइजर नहीं था, लेकिन फिर भी उनके जो डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ माजिद साहब, वो लेके मैंने कंपनी से उनके लिए हेल्प प्रोवाइड की कि भाई ये कंपनी मतलब कि खासतौर सन लाइफ कि ये शख्स, ये इनका एड्रेस, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनकी ये पॉलिसी की डिटेल्स आप बताएं, तो कंपनी बता देती कि फिर ये चीजें हैं और वो हम फिर इत्तला दे देते हैं लोगों को कि क्या पॉलिसी नंबर वगैरह वो भरेंगे। और जब हम हाँ जी बोलिए
जी, मैं कह रहा था कि अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ही नाम मालूम हो तो फिर क्या होगा
उस केस में? फिर मजीद साहब फिर क्या है कि आपको अपने बैंक डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे, है ना, कि हर महीने किस बैंक से पैसे जाते थे, किस कंपनी में जाते थे। कभी कभी 90% केसेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बैंक चले गए या बैंक से पता कर लिया कि भाई हर महीने एक्स कंपनी को जाते हैं पैसे, की वाई को जाते हैं, की जेड को जाते हैं, तो फिर आप उनको कॉल कर सकते हैं और आप एग्जैक्ट नाम बता सकते हैं कि भाई इनकी डेथ हो गई, ये उनका नाम था, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ थी और मैं, मेरा उनके साथ ये ताल्लुक था, मैं उनकी वाइफ या मदर या फादर क्या मेरा ताल्लुक है। तो उसमें परेशानी, अच्छी कंपनियां तंग नहीं करती बिल्कुल भी, लेकिन कभी कभी उसमें दिक्कत आती कि आपने कोई लिमिटेड पेमेंट की पॉलिसी ली कि 10 साल पे किया और वो निबट गया, उसके बाद पैसे नहीं जा रहे, और ये काम भी हो गया कई साल पहले, यानी कि आपने पॉलिसी मिसाल के तौर पे सन 2000 में ली जिसका कि 10 ही साल पेमेंट जाना था, है ना, तो उसके बाद पेमेंट नहीं जा रहा, पॉलिसी इफेक्टिव है लेकिन आप बैंक से पैसे नहीं कट रहे, बैंक में ये डिटेल्स आपको फिर जाके निकलवाने पड़ेंगे और इसमें बहुत लेगवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपके पास 2-3-4 बैंक हो डिफरेंट, उसके उसमें आपको जाके एफर्ट करना पड़ेगा भाई किस बैंक में इसमें कुछ था कि नहीं था, तो ये चीजें पता करनी पड़ेंगी।
और अजीत जी का फोन नंबर नोट कर लें, 416-894-5872, 416-894-5872 प्रदीप जी का फोन नंबर है। प्रदीप जी, अगर फर्ज करें कि प्राइम बेनिफिशियरी जो है वो भी अगर जिंदा नहीं है इस वक्त, तो फिर क्लेम का क्या बनता है?
फिर क्या होता है माजिद भाई कि जितने अच्छे एडवाइजर्स हैं, जितनी अच्छी कंपनी हैं, फिर उसका प्रोविजन करते हैं वो, या तो कंटिंजेंट बेनिफिशियरी के नाम डाले जाते हैं, जैसे कि मेरे केस में अगर मेरी डेथ हो जाती है माजिद भाई, तो मेरा वाइफ का नाम लिखा हुआ है एज अ प्राइम बेनिफिशियरी, लेकिन अगर हम दोनों को ही कुछ हो गया, जैसे कि आजकल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो बच्चों का भी नाम डाला हुआ है ना, तो और उनके साथ रिलेशनशिप भी डाली हुई है कि अपने बच्चे का ये नाम और ये नाम जो है, और उनके वो मेरी बेटियां हैं या बेटे हैं क्या हैं, तो वो रिलेशनशिप डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है माजिद भाई कि टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसी को हम रिव्यू करें। अब कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी बीवियों की डेथ हुए या उनसे तलाक लिए हुए सालों साल निकल जाते हैं लेकिन उसको अपडेट नहीं करते लोग, तो ये चीजें टाइम टू टाइम मिलकर एडवाइजर साथ अपडेट कर देनी चाहिए, इसकी कोई फीस नहीं लगती है माजिद साहब
जी, है ना। 416-894-5872 प्रदीप जी का फोन नंबर है। प्रदीप जी, इनकम टैक्स कहाँ और कैसे इस पे लगता है या लगता है?
इनकम टैक्स में क्या होता है माजिद भाई, कैनेडियन लॉज बहुत ही इस मामले में अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और बहुत सिंपैथेटिक लॉज हैं, क्योंकि कनाडा बेसिकली देखा जाए तो एक बहुत जिसे कहते हैं ना केयरिंग कंट्री है, ये हमें बार बार शुक्रिया अदा करना चाहिए ऊपर वाले का जिसने हमको इतनी अच्छी जगह में ला दिया है। कनाडा ऐसी जगह है जिसमें कि लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट को टैक्स नहीं लगाते वो, बशर्ते हमने बेनिफिशरी का नाम लिखा हो, यानी कि जैसे अगर मैं अपनी पॉलिसी में अपनी बीवी का नाम लिखता हूँ या बच्चों का नाम लिखता हूँ या वालदेन का नाम लिखता हूँ जिनको मैं चाहता हूँ मेरी डेथ पे पैसे मिले, तो वो कहलाते हैं नेम्ड बेनिफिशियरी माजिद भाई। और नेम्ड बेनिफिशियरी जो होते हैं उनके पास पैसे बहुत स्पीड से पहुंचते हैं बगैर किसी गवर्नमेंट सरकारी प्रोसीजर के और बगैर किसी इनकम टैक्स के। तो ये जो नेम्ड बेनिफिशियरी हैं, अपने जिन लोगों का हम नाम लिखते हैं, उनके पास टैक्स फ्री पैसे होते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि वो पैसे जो होते हैं वो क्रेडिटर प्रोटेक्टेड भी होते हैं, यानी मेरी डेथ पे मेरी बीवी से कोई ये नहीं कह सकता कि इन पैसों का तुम्हें क्या करना है, या प्रदीप ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे या नहीं भी लिए थे तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अपने विरसे में से मुझे कुछ देंगे, तो कोई उनको प्रेस नहीं कर सकता घर वालों को कि ये क्रेडिटर को पैसे दो या हमको वैसे ही टैक्स लगाती या किसी और उसमें मद में पैसे दो ये हम उसमें से, तो ये बहुत बढ़िया चीज है यहाँ की
जी। हाउ वुड यू रैप इट अप फॉर टुडेस टॉक?
आई वुड रैप इट अप कि जब आप एडवाइजर से बात कर रहे हो, इस बीच में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करने शुरू कर देने चाहिए, जैसे कि आपका अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर, आपका अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आपके जो अगर जिनकी डेथ हुई जिन इंश्योर्ड की, अगर फर्ज करें कि आपके वालिद या आपके हस्बैंड, उनका सोशल इंश्योरेंस नंबर, उनका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, उनका हेल्थ कार्ड नंबर, और बाकी जब आप एडवाइजर से बात करेंगे तो बताएगा। बेसिकली तो यही चीजें चाहिए होती हैं अगर कोई पॉलिसी 5 साल के से ऊपर चल रही है, और अगर कोई ताजी ताजी पॉलिसी ली गई और कुछ हादसा हो गया तो एडवाइजर आपको बाकी डिटेल्स भी बताएगा। और साथ साथ आप फ्यूनरल होम का जो सर्टिफिकेट आप लेते हैं या डेथ सर्टिफिकेट लेते हैं उसके डिटेल्स भी एडवाइजर को जरूर दें, ताकि एक साथ ही काम आपका कंप्लीट हो जाए। जब फॉर्म आए तो आप फॉर्म को रिव्यू कर लें भरने के पहले एडवाइजर के साथ कि ये इस तरह का फॉर्म आया और ये मेरे आंसर्स हैं, कॉपी उसकी रख लें पहले, और उसके बाद फिर एडवाइजर से मिले या डायरेक्ट सबमिट करना है तो डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं।
416-894-5872 प्रदीप जी का फोन नंबर है। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
तो फिर मंडे को मुलाकात होती है मजीद भाई, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।
ओके जी, बाय बाय।
प्रदीप जी से आपने बात की और साहब प्रोग्राम में यकीनन हमारे स्पॉन्सर्स को ज़रूर तावन दिया कीजिएगा। आज 11 अगस्त है, 11, 12, 13, 14 और 15, 14 तारीख को हम पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया करते होते हैं। मेरे पास एक डिटेल आई, सोचा आपके साथ भी शेयर करती चलूँ। प्रोग्राम का मकसद यही है कि इन दिनों के बारे में, देखिए मुझे खुद भी इल्म था, आज पाकिस्तान को बने हुए 73 ईयर्स, पाकिस्तान इंडिया के वजूद में आए हुए तकरीबन 73 ईयर्स हो गए, मगर साहब पाकिस्तान 14 तारीख को हम यौम आज़ादी मनाया करते हैं, हिंदुस्तान अपना यौम आज़ादी 15 अगस्त को मनाया करता होता है, मगर हम अपनी तारीख के बहुत सी चीज़ों से वाकफ नहीं हैं। मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पे ये था 14 अगस्त को शायद एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हालांकि दोनों एक ही दिन आज़ाद हुए थे। बरतानिया की हुकूमत ने जो अहदनामा जारी किया था उसके बीच में तारीख 15 तारीख ही लिखी हुई है, मगर क्या वजह थी कि हम अपना यौम आज़ादी 14 तारीख को मनाते हैं? आई अंडरस्टैंड कि इसका ना जानना भी विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन आवर लाइफ, वी लव पाकिस्तान नो मैटर व्हाट पाकिस्तान इज, जैसा मेरी वालदा, आई थिंक अबाउट अम्मी जान एवरी वे शेप एंड मैनर, नो मैटर कि अम्मी जान कैसी थी, या यानी जिस चीज़ से हमें प्यार है वो अनकंडीशनल लव हुआ करता होता है, तो नो मैटर 14 को बना 15 को बना जब भी बना वी लव पाकिस्तान। तो बहरहाल कहते हैं कि अब ये हम जब 14 अगस्त को पाकिस्तान का यौम पैदाइश मनाते हैं 14 अगस्त को, और साथ ये कहा जाता है कि पाकिस्तान 27 रमज़ान को बना था, जुमे का दिन था, मगर आप गूगल करके देखिएगा, अगर आप 14 अगस्त 1947 को देखते हैं तो ये जुमेरात का दिन बनता है, इट्स नॉट फ्राइडे। तो एक्चुअली पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन फ्राइडे 27th ऑफ रमदान विच वाज 15th ऑफ अगस्त, मगर कुछ वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में पिछले 72 साल से जो यौम पैदाइश है वो 15 की बजाय 14 को मनाया जाता है। आई अंडरस्टैंड इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन आवर लाइफ, मगर जब हम अपने, क्योंकि अगली जनरेशन जो हमारी आ रही हैं दे आर मोर स्मार्ट, वो कहते हैं ना कि बच्चे हमारे दौर के बड़े इंटेलिजेंट हो गए, परवीन चाकर का ही ये शेर है। आपको पता है कि पाकिस्तान को 14 तारीख को क्यों मनाया जाता है? आप भी, मैं हमेशा यही समझती रही,
हमेशा 14 तारीख का सुना है, मगर आपके उससे, क्योंकि आप तो हम पीछे जाके चेक कर सकते हैं कि
उस तारीख को क्या दिन था क्या नहीं था,
और हमेशा मैंने सुना कि 27वें रमजान को जुमे वाले दिन,
जुमे वाला दिन 27वीं, मगर अगर आप 14 अगस्त 1947 को देखें तो दैट इज थर्सडे, जुमेरात का दिन बनता है। तो एक्चुअली पाकिस्तान के जितने पेपर्स में तारीख है वो 15 अगस्त है। बहरहाल پاکستان کے پہلا اگر ڈاک ٹکٹ بھی آپ دیکھیں جو کہ آزادی کے 11 ماہ کے بعد 9 جولائی 1948 کو, یعنی ہماری فرسٹ برتھ اینیورسری سے تقریباً ایک مہینے پہلے,